कंडीशंस जैसी भी जितनी भी फ्लैट है वो इतना आपको बैट्समैन को टेस्ट कर रहा है।
प्राउड मोमेंट है स्पेशली इस वजह से क्योंकि स्ट्रगल काफी लंबी रही है।
डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल, उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में लिया है, हमें सारी बात बताई है।
सब गोल जो है हमारे पाकिस्तान के जितने भी आने वाले प्लेयर्स और यूथ के लिए जो है ये एक कॉन्फिडेंस है।
पाकिस्तान T20 में बदस्तूर आलमी नंबर एक, मोहम्मद अब्बास में ऐसी क्या खास बात जो दूसरों में नहीं? हॉकी मैनेजर और कोच की लड़ाई, कसूरवार कौन? और खातून क्रिकेटर सना मीर और फुटबॉलर कलीमुल्ला के अहम संगे मील। खेल के मैदान से अब्दुर्रशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज दूसरे T20 इंटरनेशनल में मध्य मुकाबिल हैं। दो रोज पहले खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 89 रन पर आउट करके मुख्तसर दौरानिये की क्रिकेट में अपनी बर्तरी का एक बार फिर सबूत फराहम कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस सीरीज से पहले T20 की आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर थी और सीरीज खत्म होने से पहले ही उसकी ये पोजिशन बरकरार है, क्योंकि इसके लिए 3 में से 1 मैच कम अज कम जीतना लाजिम था। T20 सीरीज तो अपनी जगह, लेकिन टेस्ट सीरीज की बाजगश्त अभी भी खत्म नहीं हुई है, खुसूसन मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग की जिन्होंने 2 टेस्ट मैचों में 17 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान को अबूजाबी टेस्ट मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। मैंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान से बात की जो इस वक्त पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज की कॉमेंट्री के लिए मुत्तहद अरब इमारात में मौजूद हैं। मेरा बाजिद खान से पहला सवाल था कि मोहम्मद अब्बास में ऐसी क्या खास बात जो दूसरों में नहीं?
शुक्र भाई, देखिए उसका बॉलिंग का स्टाइल जो है बहुत सिंपल है और सबसे बड़ी बात उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त है। उसकी जितनी बॉलें स्टंप्स को लगती हैं वैसा मेरे ख्याल दुनिया में कोई बॉलर नहीं है जो हर बॉल मतलब इतनी परसेंटेज उसकी बॉलों की जो स्टंप्स को लग रही हैं, और लेंथ और लाइन इतनी अच्छी है कि वो आपको खेलनी पड़ती है। तो अगर हर बॉल पे वो टेस्ट कर रहा है बैट्समैन की टेक्निक, अगर वो नया बॉल है तो सीम हो रहा है, पुराना बॉल है तो रिवर्स स्विंग हो रहा है, इसमें से अगर आप उसकी खसूसियत निकालें तो वो ये है कि हर बॉल ऑलमोस्ट एवरी अदर बॉल जो है वो विकेटों को लग रहा है और एवरी अदर बॉल जो है वो गुड लेंथ पे है। तो कंडीशंस जैसी भी जितनी भी फ्लैट है वो इतना आपको बैट्समैन को टेस्ट कर रहा है हर जगह से, और जरा मूवमेंट अगर मिल रही है तो वो ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह से वो बॉलिंग कर रहा है।
बाजिद खान से मैंने पूछा कि क्या टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के बाद मोहम्मद अब्बास को वनडे में खिलाने का तजुर्बा किया जा सकता है या उन्हें फिलहाल टेस्ट क्रिकेट तक ही महदूद रखा जाए?
देखिए शुक्र भाई, जितनी अच्छी इसकी बॉलिंग फॉर्म लगी हुई है मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये अच्छी बॉलिंग ना कर सके। मतलब यही बरकरार रखे तो दुनिया की कोई भी पिच हो जिसने प्रूव कर दिया और दुनिया की कोई भी सिचुएशन हो तो ये बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहा है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वनडे चलो आप देख लो, लेकिन T20 हरगिज इसको ना खिलाओ, क्योंकि T20 में एक तो बॉल डिफरेंट है, पिचेस डिफरेंट है, ऊपर से वो सिचुएशन जहाँ पे पेस कम होती है तो कभी कोई बदतमीजी वाली क्रिकेट खेलेगा तो शायद कॉन्फिडेंस कम हो जाए। मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहिए।
पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर सना मीर ICC की वनडे बॉलिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। मैंने कुआलालंपुर में सना मीर से बात की जहां वो इस वक्त पाकिस्तानी खवातीन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महदूद ओवर्स की सीरीज खेलने में मसरूफ हैं। मेरा सना मीर से पहला सवाल यही था कि पहली मरतबा किसी पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर का आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करना, क्या कभी आपने सोचा था इस बारे में?
डेफिनेटली काफी एक प्राउड मोमेंट है स्पेशली इस वजह से क्योंकि स्ट्रगल काफ़ी लंबी रही है, काफ़ी लंबी जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की। 2009 में मैं पहली बार टॉप 20 रैंकिंग में आई थी ICC के, उसके बाद से अब तक अलहम्दुलिल्लाह हमेशा टॉप 20 में ही रही, पर पिछले एक साल के अंदर नवंबर में मैं पहली बार टॉप 10 में ब्रेक इन किया, फिर मार्च में टॉप 5 में आई, नंबर 4 पे आई, और इस सीरीज़ के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त नंबर 1 टीम है दुनिया की और इनके अगेंस्ट इनके प्लेयर्स को आउट करके ये रैंकिंग लेना मेरे लिए भी बहुत एज़ाज़ की बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये एक बैरियर था जो कि हमारी लड़कियाँ अभी तक नहीं तोड़ पाई थी, तो मेरे ख्याल से इसको तोड़ने के बाद बहुत सी और इंशाल्लाह रास्ते खुलेंगे और ये लड़कियों में भी एक जज्बा और ज़्यादा पैदा होगा कि वो लोग भी इस जगह तक पहुंच सकती हैं। तो इस वजह से मेरे लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है।
सनामीर से मैंने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और दीगर बड़ी टीमों के खिलाफ कारकर्दगी में तसलसल नहीं दिखा पा रही।
बिल्कुल जी, इस वक्त हम लोगों की जो बड़ी टीम्स हैं उनके खिलाफ परफॉर्मेंस अभी कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम हमारे जैसी जो टीम्स हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, आयरलैंड, जो हमारे साथ जिन्होंने शुरू किया, उनके साथ हमारी फिर भी काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज हैं। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म करना है, उसके लिए मेंटल टफनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और स्किल को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वुमेंस क्रिकेट में पावर की गेम बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके लिए पूरे साल हमें इन कैंप्स रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं बाकी दुनिया से, तो हमारे बैटर्स को ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी और जो पूल है प्लेयर्स का उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें अपने डेवलपमेंट स्क्वाड्स, पाकिस्तान ए, अंडर 19, इनको प्रॉपरली बना के, इनके साथ कोचिंग स्टाफ लगा के, और उनको सेम लाइंस पे आना होगा जो पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ है, उसकी सेम विजन के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके हम इन टीम्स के करीब आ सकेंगे।
और अब पाकिस्तानी हॉकी के एक ऐसे तनाज़े का जिक्र जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हुई है। मस्कत ओमान में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैनेजर हसन सरदार और कोच मोहम्मद सकलेन में ऐसी ठनी कि मैच के दौरान ही वो आपस में उलझ पड़े। इस वाक़े के बाद मोहम्मद सकलेन को वतन वापस रवाना कर दिया गया। मैंने इस तमाम तर सूरतहाल के तजिए के लिए बीबीसी के कराची स्टूडियो में जहमत दी साबिक ओलंपियन इस्लाहुद्दीन को, जो इस वक्त चीफ सेलेक्टर भी हैं। मैंने इस्लाहुद्दीन से पूछा कि गैर मुल्की सरजमीन पर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दौरान मैनेजर और कोच का झगड़ा, इससे दुनिया को क्या पैगाम गया होगा।
हार जीत का तो हर एक का जवाब होता है, लेकिन अगर कोई किसी किस्म का कोई मिसहैप हो, और एक ऐसा मिसहैप हो जिसमें कि पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो जाए, वो यकीनन अच्छी बात नहीं होती। मैं खिलाड़ियों से भी हमेशा ये बात कहता था और ऑफिशियल से भी कि इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी वाकया हुआ वो मैंने अखबारात में पढ़ा, यकीनन वो अच्छी बात नहीं है, और ऐसी बातें दूसरे ममालिक में जाकर अगर हों तो उससे न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों पर फ़र्क पड़ता है, टीम के पूरे मोरल पर फ़र्क पड़ता है, और जो लोग बाहर बैठे देख रहे होते हैं उन पर भी पड़ता है, और जो उस वक्त उस ग्राउंड में मौजूद होंगे यकीनन उन्होंने भी सब कुछ देखा होगा, तो उन पर भी इम्प्रेशन इसका अच्छा नहीं गया होगा। मुनासिब होगा कि जब हसन वहाँ से वापस आएंगे, टीम खेलकर वापस आएगी और फेडरेशन दोनों को बुलाकर मालूमात करेगी, तो सही पिक्चर जो है कि हकायक क्या हैं वो सामने आएंगे। लेकिन ये कि कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है, मगर मैं समझता हूँ कि वो कभी भी ऐसा कदम ना उठाते अगर कोई बहुत बड़ी बात ना होती। और वो जो बात जैसे मैंने कही कि डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
मैंने इस मामले पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और अपने दौर के मायनाज खिलाड़ी शहबाज अहमद से भी बात की और उनसे पूछा कि क्या सकलेन को वतन वापस भेजने का फैसला मैनेजर हसन सरदार का अपना था या उन्होंने इस सिलसिले में फेडरेशन को एतमाद में भी लिया था।
बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में लिया है, हमें सारी बात बताई है, क्योंकि देखें आप किसी भी दस्ते को जब भेजते हैं, जैसे एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, शेफ डिमिशन होता है, तो वो शेफ डिमिशन सारी गेमों का हेड होता है, वो कोई भी मुल्क की रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए डिसीजन ले सकता है। अब हसन सरदार जो है 60 ईयर उसकी एज है, हिस्ट्री उसने मुल्क के लिए क्रिएट की है, उसकी लॉयलिटी पे कोई डाउट नहीं है। अगर वो किसी प्लेयर को या किसी भी अपने सबॉर्डिनेट को रिकमेंड करता है कि शहबाज मैं चाहता हूँ कि आप इसको वापस बुला लें, टूर्नामेंट के बाद आके बात होगी, तो मैं समझता हूँ ये एक वाइज डिसीजन है। ये सकलेन से भी ज्यादा बुरा लगता अगर हम हसन सरदार को ऑनर ना करते और हसन सरदार कहता है शहबाज भाई अच्छा फिर मैं ही वापस आ जाता हूँ जब आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे या रिलाई नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैनेजमेंट का डिसीजन था जिसको हमने ऑनर इसलिए किया कि हमने मुल्क की इज्जत देखनी है।
पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर कलीमुल्ला ने 4 साल पहले जब किर्गिस्तान के क्लब डोरडोई से मुआहिदा किया तो वो पाकिस्तान की फुटबॉल की तारीख के महंगे तरीन फुटबॉलर बने थे। इसके बाद वो अमरीकी लीग खेले और अब तुर्की में लीग खेल रहे हैं, और इस दौरान वो अपने प्रोफेशनल करियर में गोल की सेंचुरी भी मुकम्मल करने में कामयाब हो गए हैं। میں نے کلیم اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ اپنے کریئر میں 100 گول مکمل کرنے والے ہیں اور آپ کے کریئر کی سب سے بہترین کارکردگی جو آپ کو اب تک یاد ہو؟
ہاں یہ مجھے پتا تھا کہ میں 3 گول رہ گیا, تو اس چیز کے لیے میں بہت موٹیویٹڈ تھا. جب لیگ سٹارٹ ہو جائے تو میں سب سے فوکس جو ہے وہ اس 100 گول کو پورے کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو پورے کیا اور اللہ نے مجھے ہر وقت اپنے محنت کا صلہ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100 گول جو ہیں ہمارے پاکستان کے جتنے بھی آنے والے پلیئرز اور یوتھ کے لیے جو ہیں یہ ایک کانفیڈینس ہے, ان کے لیے ایک موٹیویٹڈ ہے کہ آپ بھی اگر محنت کرو گے آپ بھی یہ 100 گول کر سکتے ہیں. میرے لیے یادگار گول جب میں کیریل کے ساتھ ایف سی پریزیڈنٹ کپ کھیلنے کے لیے گیا تھا, تو میرے سامنے میرا ٹیم ایکس ٹیم ڈوڈو ایف سی میرے سامنے آیا تھا سیمی فائنل میں, جس کے خلاف میں نے گول کر کے اپنے ٹیم کو فائنل پہنچایا تھا ایف سی پریزیڈنٹ کپ کا. پاکستان کے تاریخ میں 63 سال کے فٹ بال کے تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی ٹیم ایف سی پریزیڈنٹ کپ کے فائنل تک پہنچا تھا. اس دوران میں نے 7 گول کیا تھا اس ایونٹ میں.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
سربیا نے اٹلی کو 3-2 سے ہرا کر ورلڈ چیمپئن شپ ویمنز والی بال ٹرافی جیت لی. چین نے ہالینڈ کو 3-2 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی. سری لنکا میں انگلینڈ نے سری لنکا کے خلاف 5 میچوں کی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز 3-1 سے جیتی. دونوں ٹیموں کے درمیان کل 2020 میچ کھیلا جائے گا, جس کے بعد 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جائے گی. دہلی میں ایتھوپیا کے رنرز نے دہلی ہاف میراتھن ریس میں مردوں اور خواتین کے مقابلے جیت لیے. مردوں کا ٹائٹل آن دام لاک بیلی ہو نے جیتا. ان کا وقت 59 منٹ 18 سیکنڈ رہا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.